حتى اذا بلغ بين الصدين، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا درمیان دو دیواروں کے. اب یہ تیسری مہم شروع ہو گئی، ایک اور راہ پہ چلا، دو بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچ گیا. کیا ہوا؟ وجد من دونہما قوماً، اس کے پاس اس نے ایک ایسی قوم دیکھی، لا یکادون یفقہون قولا، جو بات بھی نہ سمجھ سکتی تھی. قالو، وہ کہنے لگے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون، مفسدون فی الارض. اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے اس سرزمین میں فساد مچا رکھا ہے. فہل نجعل لک حرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اگر ہم آپ کو کچھ چندہ یعنی منی ڈونیشن اکٹھا کر دیں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، کہا میرے پروردگار نے جو مجھے مالی قوت دی ہے وہی بہتر ہے. ہاں تم کرنا چاہو تو فعینونی بقوہ، مجھے بدنی قوت سے میری مدد کرو، یعنی بدن سے اپنی جان سے میری مدد کرو، مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ اج البینکم و بینہم ردما، ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا. کیسے بنے گی دیوار؟ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، ذوالقرنین نے جب ان چادروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کر کے خلا کو پاٹ دیا تو ان سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ. کب تک؟ حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، یہاں تک کہ وہ لوہے کی چادریں آگ کی طرح سرخ ہو گئیں تو اس نے کہا اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں ان چادروں کے درمیان بہا کر پیوست کر دوں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فمستطاعوا ان یظہروہ ومستطاعوا لہ نقبا، اس طرح یہ بند ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. اتنا بڑا کام اللہ نے ان سے کروایا تو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے پروردگار کی رحمت سے بن گیا ہے. ہمیشہ رہے گا؟ نہیں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ، جب میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس بند کو پیوندے خاک کر دے گا یعنی گرا دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یہاں تک تیسری مہم ہے. ذوالقرنین اب شمال کی طرف جاتا ہے. پہلے کدھر گیا تھا؟ مغرب، ویسٹ. دوسری مہم تھی مشرق یعنی ایسٹ، اور اب تیسری ہے شمال یعنی نارتھ سائڈ پہ، اور پیچھے ساؤتھ ہی رہ جائے گی. اسی سے آپ دیکھیے کہ اس کی حکومت کتنی پھیلی ہوئی تھی، کہاں کہاں یہ جا رہا تھا. قرآن پاک میں اس کا ذکر جو ملتا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، ایک قفقاز، کاکیشیا کی سائڈ کا کوئی علاقہ ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اس طرف پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی وسعتیں دیں کہ یہ وہاں گیا، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کام کرایا. میں اس بات کو پڑھ رہی ہوں اور میں محسوس کر رہی ہوں کہ اللہ نے اپنے کام جب کروانے ہوتے ہیں نا تو اس طرح لوگوں کو ادھر سے ادھر لے جاتا ہے. آپ کو پورے واقعے میں قدر مشترک مل رہی ہے نا، کہ بندہ مومن زمین کے کسی کونے میں بھی چلا جائے، اگر اس کی ذات سے کسی کو خیر پہنچنی ہے، نفع پہنچنا ہے، تو وہ پہنچ کے رہے گا. वो ये बात नहीं कहता कि मैं तो वहाँ था तो इसलिए ये नहीं कर सका, मैं फिर वहाँ हो गया तो फिर तो बिल्कुल नहीं हुआ, और अब मैं यहाँ आके तो अभी करने के मूड में ही नहीं हूँ। हमारा हाल क्या है, ज़रा आउट ऑफ प्लेस होते हैं ना तो आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं, ज़रा सफ़र ही करना पड़ जाए ना तो फ़ौरन सोचते हैं कि जो कर रहे थे वो तो छूट जाएगा। हमारे प्लान्स में ही नहीं होती वो बातें तो फिर तौफीक भी नहीं मिलती। हालांकि ईमान वाला चाहे अपनी दौलत के ज़ोर पे लोगों के और फितनों के बीच में हकीकी दीवारें खींच रहा हो, या फिर लोगों को अल्लाह की किताब से जोड़ के उनके जहनों में ऐसी दीवारें खींच रहा हो जो फितनों को उनकी तरफ ना आने दें, लेकिन वो अपना काम करता रहता है। मुझे तो रश्क आ रहा है इस शख्स पे। अल्लाह ताला ने आखिर इसका जिक्र कुरान पाक में दिया, कोई छोटी बात तो नहीं है। बादशाह था, कोई नबी भी नहीं, कोई बहुत दीनदार शख्स भी नहीं बताया गया इसको, बस इंसाफ करने वाला था। असल में ये पैगाम है हम सबको रहती दुनिया तक के लिए कि इस्लाम मींस और रिसोर्सेज के ख़िलाफ़ नहीं है। इस्लाम दौलत के साथ भी फैल सकता है, और इस्लाम तबलीग के साथ भी फैल सकता है, और इस्लाम तलवार के साथ भी फैल सकता है। अल्लाह ने दुनिया में मुख्तलिफ लोग पैदा किए, उनके ज़िम्मे मुख्तलिफ काम लगाए, हर बंदा अपने हिस्से का काम करके रहता है और फिर इसके बाद वो दुनिया से जाएगा। अपने लिए अच्छी सी दुआ मांगे कि अल्लाह जिस तरह इसने इंसानियत को फ़ायदा दिया हमें भी तौफीक दे कि हम तेरी इंसानियत को फ़ायदा दें। जितनी बड़ी बड़ी दुआएं मांगेंगे ना उतनी बड़ी बड़ी तौफीक मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो मींस ही नहीं है, असबाब ही नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने उसको असबाब दिए, तो अल्लाह सबको दे सकता है। अगर वो आज से इतने 100 साल पहले जा सकता है तो आज तो दुनिया है ही एक ग्लोबल विलेज। बड़े बड़े प्लान करके बैठा करें कि अल्लाह हमने तेरा ये पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाना है, इससे भी इंसानियत को फ़ायदा होगा। आप कहेंगे हम कहाँ जाएंगे, हम नहीं जा सकते, किसी को बता तो सकते हैं। मतलब मैं यहाँ बैठी हुई बात कर रही हूँ तो मैं सोचूंगी कि मैं कितने लोगों को जानती हूँ, कहाँ जानती हूँ, दुनिया के किस खित्ते में जानती हूँ। कोई ऐसा कोना जहाँ कोई बैठा है और उसको कोई तरीका ही नहीं है उसके पास अल्लाह के दीन को सीखने का, क्या मैं उसको इस नेट के ज़रिए से अल्लाह की किताब से नहीं जोड़ सकती? अब देखेंगे कि इतनी नेकी है जो हमारे हाथ में होती है और हम करते ही नहीं। मुतमईन मसरूर, कोई बात नहीं, अभी बहुत उम्र पड़ी है, कोई और कर लेगा। नहीं, उन्होंने तो मानना ही नहीं, उनको तो शौक ही नहीं, वो तो सुनते ही नहीं। चलो हम बैठ गए, हमारे सारे उज़र सच्चे हो गए। ऐसा ना कीजिए, अगर दुनिया में लोगों को नफ़ा पहुंचाएंगे तभी हमारे लिए कोई बाद में दुआएं करेगा। फाम मामा यन फोन नास, जो लोगों को नफ़ा देगा वही बचेगा। अच्छे इरादों के साथ भी इंसान अजर पा लेता है, काम करने के मौके तो चंद ही लोगों को मिलते हैं। इस वाक्य में आपने देखा कि उसने एक कौम जो बेचारी कोई भी उसके पास मींस नहीं थे, लेकिन वहाँ याजूज माजूज जो थे वो बीच में आते थे, और उन्होंने उससे बचने के लिए इससे फरमाइश की कि देखो हम कुछ पैसे जमा करके आपको दे देते हैं, आप एक दीवार बना दें। सद्दैन, सद से यहाँ पहाड़ी से मुराद है, सद असल में कहते हैं बंद करने को। उर्दू में एक लफ्ज़ सुना होगा अपने सद्दे बाप, इस चीज़ का सद्दे बाप कर दो, ख़त्म कर दो इसको, बाप कहते हैं दरवाज़े को। तो दरवाज़ा बंद करना क्या होता है, किसी मीन्स को ख़त्म कर देना। तो ऐसे लगता है कि ये लोग जहाँ मौजूद थे वहाँ पे वाकई किसी दीवार की ज़रूरत थी, क्योंकि दूसरी तरफ फितने थे, तो उन्होंने इनसे फरमाइश की कि देखो आप ये दीवार बना दीजिए तो हम फिर इनसे महफूज हो जाएंगे। और इन्होंने कहा कि ठीक है मुझे माल की ज़रूरत नहीं है। काल मा मक्कन्नी फीही रब्बी खैर, ये क्या बात सिखाती है, इससे क्या पता चलता है उनकी कनात। बादशाह तो थे लेकिन हरीस नहीं थे दौलत और माल के। इसके बरक्स दुनिया में अक्सर देखा गया कि जिनको दुनिया की कुछ नेमतें ज़्यादा मिल जाती हैं ना उनके दिल और छोटे हो जाते हैं, जिनको ज़्यादा मिलता है वो और पाने की कोशिश करते हैं। अगर ज़मीन का टुकड़ा मिल गया तब उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा नहीं जो है वही ठीक है, वरना कोई होता कहता पहले ये ज़मीन का टुकड़ा मेरे नाम लगाओ, साइन करके दो, गिव अप करो, फिर मेरे नाम का यहाँ झंडा लगाओ तो मैं फिर ये काम करूँगा। नहीं, खैर ख्वाही बग़ैर किसी फ़ायदे के। और यही लोग होते हैं अल्लाह के सच्चे बंदे, अपने ज़ाती फ़ायदों से उठ के इंसानियत के लिए वन साइडेड नेकी करने वाले। उनको कुछ चाहिए नहीं है, कहा हाँ बस ये कर दो कि अपनी कुव्वत दे दो। फ़ाइनूनी, आइनून क्या होता है, ऑन से, आइन वाओ नून, ऑन एआनत मोइन मुआवनत वस्ताइनू, ये सब एक ही लफ्ज़ है, मदद कर दो। बिकुवा कुव्वत के साथ करो। यहाँ भी एक बहुत लतीफ़ नुक्ता है, और वो क्या कि हर जगह ज़रूरी नहीं कि माल ही फ़ायदा दे, इंसानों की ज़रूरत होती है। लेबर वर्क, मज़दूरी, तुम मेरे साथ लगो, बड़ी बड़ी चादरें हैं, सामान है, तो मेरी मदद करो। ये क्या बात समझ आई हमें कि बास दफ़ा हम लोग ये सोचते हैं कि हम दीन के लिए या फ़ायदे के लिए अपना माल ही दे रहे हैं लोगों को, तो बस ये फ़र्ज़ पूरा हो गया। लेकिन याद रखिए, हर जगह माल काम नहीं आता, माल से वो नहीं मिलता जो इंसानों से मिलता है। आपकी लॉकर में, आपके बैंक में लाखों भी पड़े हों, लेकिन अगर आपके पास काम करने वाले लोग नहीं होते ना, तो बस फिर आप समझ जाइए कि आप काम नहीं कर सकेंगे। बस जब पैसा हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन काम करने वाले लोग होते हैं, तो फिर क्या होता है, बड़ी बड़ी दीवारें हायल कर दी जाती हैं दुश्मनों के बीच में और अपने बीच में। यहाँ दीवार बनने की बात है, याजूज माजूज से बचने के लिए। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में एक ऐसा मौका भी आया था कि खंदक खुदी थी, कितनी चौड़ी कितनी लंबी, मदीना में मुसलमानों ने अपने दिफा के लिए। कोई उस वक्त आपके बैंक में कुछ नहीं था, कोई इंश्योर्ड नहीं थी, कोई आपके पास कोई सॉलिड मनी नहीं रखी थी, लेकिन काम करने वाले जियाले थे आपके साथ, वो लोग जो पेट पे पत्थर बांध के भी अल्लाह के दीन के दिफा के लिए निकलते हैं ना, ऐसे ही लोग फिर दीन के लिए काम वाले होते हैं। कि एक सहाबी कितने को भूखे हुए होंगे कि कहा अल्लाह के नबी देखिए पेट पे तो पत्थर बंध गया। तो फिर आपने भी एक अच्छा कायद होने का सबूत दिया कि देखो मेरे पेट पे तो दो पत्थर बंधे हुए हैं, अल्लाह। और आप देखिए, जिस दिन आप ज़रा भारी काम करते हैं ना, तो आपको खूब ज़ोर से भूख लगती है। रोज़ ऐसे ही खाते हैं कि अब खाने का वक्त है, खा ही लें, फिर बाद में लेट होंगे, लेकिन उस दिन आपका पेट अंदर से मांगता है, ऐसे लगता है कि आपकी अंतड़ियाँ कट रही हैं। हमने कहा अल्लाह के दीन के लिए भूख सही, हमारी ज़िंदगियों में भी कोई ऐसी कुर्बानी है, हमने भी कहीं इंसानियत को नफ़ा देने के लिए भूख और प्यास से अपने आप को रोका। वॉलंटियर करना अपनी जान से जो है वो माल लगाने से ज़्यादा अफसल होता है बाज़ दफ़ा। हर काम आप माल दे के नहीं करवा सकते, मसलन अगर अल्लाह ने आपको कोई स्किल दी है, आप किसी जगह अपनी उस स्किल को इस्तेमाल करते हैं और माल नहीं लेते बिलफर्ज, या अगर आप ले भी लेते हैं, बाज़ दफ़ा माल लेने से भी अजर नहीं घटता, लेकिन आपकी वो स्किल अगले के काम आ गई। और इसके बरक्स अगर किसी दूसरे को आपसे ज़्यादा माल भी दे दिया जाए, लेकिन उसको वो काम ना करना आता हो, या वो उस फील्ड का स्पेसिफिक नहीं है, वो उस काम को डिज़र्व ही नहीं करता, तो वो काम नहीं होगा ना। इसलिए बाज़ औक़ात जान लगाने वाले माल लगाने से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। और आप एक चीज़ और भी देखें, अमूमन इंसानों को अपनी चीज़ों में से सबसे प्यारी चीज़ क्या होती है, आप सोचेंगे कैसे पता चले, बच्चे, औलाद, माल, गोल्ड, डायमंड? नहीं, सिंपल सी मिसाल है, चोर आ जाए घर में और गन पॉइंट पे कह दे कि अपनी चूड़ियाँ उतार दो, देते हैं कि नहीं? जान बचाते हैं क्या? जान प्यारी होती है। ये जो कहते हैं ना बच्चे प्यारे होते हैं, ये भी झूठ है, शौहर प्यारा है, नहीं प्यारा, आपकी अपनी जान आपको प्यारी होती है। ये जान ही तो है जिसको बनाते रहते हैं, कहते हैं ना जान है तो जहान है। बच्चों से ज़्यादा, माल से ज़्यादा, इज्जत से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा अपनी जान का फिक्र है। बाज़ दफ़ा जब जान के लाले पड़ते हैं, तो माएँ अपने हाथों से बच्चों को भी फेंक देती हैं कि मैं बच जाऊँ। ये जान जिसने दे दी ना रब के रास्ते में, चाहे तो घुल घुल के, चाहे तो गम खा खा के, चाहे तो मेहनतें कर कर के, फिर ये नहीं हो सकता कि अल्लाह उसकी कदरदानियाँ ना करे। अल्लाह के पास बंदे की कदर होगी, कल जाके कयामत के दिन पता चलेगा कि अल्लाह और तो कोई गम नहीं था, यही गम था कि तेरा काम हो जाए। नींद, भूख, प्यास, खाना, ख्वाहिशात कुर्बान करते करते जान तक आ जाती हैं। देखिए, जब फारिग रहता है ना इंसान, एमलेस लाइफ गुजारता है, तो फिर वो बहलाता है, कपड़े कैसे बनाऊं, अच्छा चलो मैचिंग लेस ना ले आऊं, अच्छा देखती हूँ ज़रा इस पे कोई बटन भी अच्छे लगते हैं तो वो भी ले आती हूँ। सारा दिन इस जान को सजाते रहते, इस मिट्टी के बुत, इस मिट्टी का क्या इंसान का जिस्म, कभी आप सोचें अपने जिस्म को देख के कराहत आती है, मिट्टी की ढेरी है, ये मिट्टी में जाएगी, इसको सजा लें, इसको संवार लें, इसको घंटों के हिसाब से हम मशीनों में डाल दें, लेकिन आखिर एक दिन ये मिट्टी में जाएगी और जाने वाली है, बड़ी करीब है वो वक्त। एक दिन ये आवाज़ नहीं रहेगी, एक दिन ये कान नहीं रहेंगे सुनने वाले, एक दिन ये हाथ नहीं रहेंगे लिखने वाले, ये दिल जो इस वक्त अपनी मर्जियां मांगता है ये नहीं रहेगा, लेकिन हमारे काम बाकी रह जाएंगे अगर कुछ कर गए, हमारी कोशिशें बाकी रह जाएंगी अगर हमने इखलास से की, और हमारे वो नफ़े बाकी रह जाएंगे जो हमने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए किए। और ये काम वही करते हैं जिनको किसी अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं होती, जिनको बिल्कुल अपने आप को नुमाया करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप को एडमायर नहीं कराना चाहते, अपने आप को हाईलाइट नहीं कराना चाहते, जो सेल्फलेस काम करते हैं, सेल्फ प्रोजेक्शन का शिकार नहीं होते, सेल्फ पिटी का शिकार नहीं होते और सेल्फ सेंटर्ड लोग नहीं होते। हमारी ज़ात का हाल क्या है कि हम हर वक्त अपनी जान पे पड़े रहते हैं, जान पे बात आ गई तो फिर जान ही निकल गई। तो लिहाजा हम सबको, सबसे पहले मुझे और आपको, अपने लिए एक कमिटमेंट करनी है कि अल्लाह इससे पहले कि ये ज़िंदगी खुल जाए, ये वक्त चला जाए, कुछ ऐसे काम करवा ले कि हमारे लिए बाद में ये दुनिया में कुछ निशानियां रह जाएं। देखिए, एक बच्चे की पैदाइश तक माँ कितनी जान खुलाती है ना, वो जो 9 माह बच्चा माँ के पेट में रहता है, उसका खून चूसता है, उसकी जिस्म की बहुत सारी ताकत लेता है, उसका खाना लेता है, फिर 2 साल तक उसको दूध पिलाती है, ये माँ की जान लेता है ना वो बच्चा, और फिर बाद में सारी ज़िंदगी बच्चे सताते ही रहते हैं, इल्ला माशाल्लाह। खुश भी करें फिर भी तंग तो करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां तो सारी ज़िंदगी निभानी पड़ती हैं, फिर वो एक बच्चा तैयार होता है ना, और कोई पता नहीं कि अगर हमने उसके दीन और अखलाक की हिफाजत ना की तो वो कल हमें कुछ भी ना दे, सिवाय इस ख्याल के कि बस एक बच्चा, पीछे बच्चा छोड़ के जा रही हूँ। नेमत है अल्लाह की, अल्लाह सबको दे और जिनको दिए उनके बच्चों को उनकी आंखों की ठंडक बनाए, लेकिन इससे ऊपर बढ़ के सोचना है। बाकियातु सालेहात फाइनूनी बिकुवा, और जब इंसान के पास कुव्वत हो और वो रब के लिए ना दे ना, तो ये बस ऐसी ही कहानी है कि जैसे किसी इंसान ने हमसे कुछ मांगा और उसको पता भी चल गया हमारे पास है और हमने फिर भी छुपा लिया, मैं नहीं दे रही। टके की कीमत नहीं रहती ऐसे इंसान की जिसके बारे में यकीन हो ना कि इसके पास कोई चीज़ है और इसने छुपा ली, या आपको ब्लैकमेल किया, अच्छा अब इसको मेरी ज़रूरत है ना तो ज़रा आकड़ के दिखाता हूँ। हाँ, लोगों को ना पता चले और आप कह दें नहीं है, तो वो कह सकता है कि हाँ इसके पास ये चीज़ नहीं थी जो मैंने मांगी है। अल्लाह की नज़र तो हमारे अंदर की सलाहियतों पर भी छुपी हुई है, हम जब बचा बचा के रखते हैं ना तो रब की नज़र वहाँ भी होती है, और कहते हैं ना कि जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, तू बचा बचा के न रख किसे कि तेरा आईना वो आईना है, जो शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है, निगाह है आईना सांस में। इस जान को बचा के ना रखो, ये टूटेगी, ये दिल टूटेगा रब के रास्ते में तो उसको प्यारा लगेगा, उसको साबित दिल नहीं अच्छे लगते, टूटे हुए दिल अच्छे लगते हैं, इस दुनिया से टूट चुके हों, कलबन सलीमा सलामत दिल मुकम्मल उसके बनने वाले अगर यहाँ ये लोग उसकी मदद ना करते, अकड़ जाते, नहीं नहीं हम नहीं कर रहे, तो क्या ये दीवार बनती? रद्दमा, मोटी दीवार, थिक लेयर्स। इससे ये भी पता चलता है कि एक इंसान जितनी मर्जी कोशिश क्यों ना कर ले, जितना मर्जी उसके दिल में इखलास क्यों ना हो, करेगा वो वही जिसके उसको असबाब मिलेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया से चले गए बहुत कुछ करने के इरादे रखने के बावजूद, ख्वाहिशात के बावजूद, लेकिन उनको मीन्स नहीं मिले। तो क्या अल्लाह उसका अजर ज़ाया करेगा? कभी ज़ाया नहीं करेगा। इंसानों को तो वो की हुई कोशिशें सामने दिखती हैं ना, रब को तो वो भी पता चलती हैं जो बंदा नहीं कर पाता, और उसके साथ वो ख्वाहिशात कब्र में चली जाती हैं। कल कह दे गए अल्लाह मैं जो कर सकता था मैंने किया, तू बता मैं और क्या करता, मेरे पास जो था मैंने तो तेरे सामने खोल के रख दिया, तूने कराना था तो और करवा लेता, मेरा काम मैंने कर लिया, बाकी जिनके काम थे तो उनसे पूछ। आतूनी ज़ुबर अल हदीद, मुझे लोहे के टुकड़े दो। ज़ुबर टुकड़े को कहते हैं, इसी से ज़बूर है, छोटी छोटी राइम्स थी ना उसमें। टुकड़े दो मुझे हदीद लोहे के। आप इस बात से फील करें कि उस दौर में क्या टेक्नोलॉजी थी, आज भी पहाड़ों के बीच में दीवार नहीं खिंचती। लगता है कि कोई ऐसी जगह थी, पूरा पहाड़ी सिलसिला था और बीच में कोई ऐसे कोई दर्रा सा होगा, मे भी कुछ फुट चौड़ा कोई कुछ, तो उसको इसने लोहे की चादरों को पिघलाया और फिर उसमें लोहे के तख्ते डाले और ऊपर से पिघली हुई कोई लोहे की चीज़ें डाल दी। आज भी जैसे स्टील मिल्स में काम होता है ना, पहाड़ किस्म की एक चीज़ बन गई। अमूमन ये बात पढ़ते हुए हैरत होती है, ये कैसे हुआ होगा, अक्ल के ख़िलाफ़ बात लगती है। लेकिन अगर आप में से किसी ने इजिप्ट का सफ़र किया हो तो अहराम मिस्र देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उस वक्त ऐसे ऐसे आलाते तामीर थे कि जिनका आज तसव्वुर भी नहीं है। यानी मसलन जैसे मैंने खुद देखे, इत्तेफाक हुआ काहिरा में, पिरामिड्स थे, मैंने खुद देखे, इतने बड़े होते हैं। आप यहाँ खड़े होकर सर ऊपर देखें ना तो बिल्कुल पहाड़ लगते हैं इंसानों के बनाए हुए, और छोटे छोटे, यानी बिल्कुल आप देखें जैसे पतली ईंटें होती हैं ना, उतनी चौड़ी चौड़ी बस ईंटें जुड़ जुड़ के बनी होती हैं, बस एक के ऊपर ऐसे किरचियाँ 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 जुड़ी होती हैं। अब तो वो अंदर ज़्यादा नहीं जाने देते, लेकिन उसके बारे में यही मशहूर है कि इसके अंदर पूरे कमरे बने हुए हैं, और पहले दौर के बादशाह ये वसीयत करके जाते थे कि हमारा सामान हमारे साथ ही इसमें दफन कर दिया जाए, क्योंकि उनका ख्याल था कि जब हम नई दुनिया में उठेंगे तो ये सामान हमें फिर चाहिए होगा, और इस तरीके से फिर वो दफन होते हैं। खैर बाद के दौर में वो सोना चांदी तो अंदर से निकाल दिया गया और वो मिट्टी के पहाड़ ही उनकी इकोनॉमी को चलाने के लिए बेहतरीन चीज़ है, टूरिस्ट वहाँ जाते हैं और सब करते हैं। तो ये जो ऊंची सी दीवार है ना, उससे आप बहुत अच्छा गैस कर सकते हैं। पूरे पहाड़ों को उन्होंने अपने बुतों की शक्ल में तराशा हुआ है, एक पूरा बड़ा सा बुत अबुल हॉल। लेकिन अबुल हॉल और बहुत सारे शिरक हैं और क्या कुछ कहानियाँ उसके साथ भी। खाल आतूनी उफरे गलई खेतरा, खेतर कहते हैं पिघले हुए तांबे को, वहाँ डाला वो जम गया। फमस्ताऊ आई यसखरू, अब नहीं वो कर सकते कि इसके ऊपर आए, ताकत ही नहीं रखते वहाँ। यानी आप देखिए कि उस दौर में मतलब कोई बड़ी बड़ी क्रेनें नहीं थी, लिफ्टें नहीं थी। आपको पता है कि उस दौर में ये काम किन से लिए जाते थे? गुलामों से, उनकी मशीनें गुलाम थे, एक के ऊपर दूसरे को खड़ा करके उसके ऊपर खड़ा करते थे। ये भी एक जुल्म की ना ख़त्म होने वाली कहानी है। आप फेरोज़ के ख़ानदान के बारे में तो पढ़ते ही हैं ना, कैसे बनी इसराइल को ग़ुलाम बनाए और उनसे बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते थे, आपने ये सुना होगा कुरान पाक में जिक्र। फिर इसी तरह आगे आप पढ़ेंगे जो बड़ी बिल्डिंग्स बनी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी इंसान करते थे, और इंसान के हाथ में ज़्यादा नज़ाकत होती है। पुरानी बिल्डिंग्स को देखिए, जैसे ये शीश महल और छोटे छोटे शीशे टुकड़े लगे होते हैं, अकल दंग रह जाती है। मशीनें आज उतनी बारीकी से काम नहीं करती। शायद आपको याद होगा कि चंद साल पहले पाकिस्तान में भी चिप्स के फर्श होते थे, छोटे छोटे पत्थर कूटे हुए डलते थे, बीच में सीमेंट, फिर रगड़ाई होती है, और वो इंसान करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब घर बनते थे और मशीनों से जब रगड़ाई होती थी तो वो उसकी रगड़ाई में कितने पत्थर निकल जाते थे शुरू में ही। इतने खूबसूरत पत्थर, इतनी मशीनों से चमक रहे हैं, सफ़ेद पत्थर का रिवाज था। लेकिन उससे 20 साल पहले के बने हुए घर जो हमारे नाना दादा के घर हैं, उसमें भी वही चमक और वही उसके पत्थर हैं। क्यों? कि वो इंसानों की कोशिशें थी। ये अल्लाह की शान है। इसी तरह आप देखिए कि उन्होंने हाथ से बनाया और काम हो गया। फमस्ताउ अन यसहरू वमस्ततऊ लहू नक़्बा। अब इसमें नकब नहीं लगाएंगे, नकब सुराख नहीं कर सकते, यानी ये याजूज माजूज की तरफ इशारा है। इससे क्या पता चलता है कि जब एक एफर्ट हुई, एक टीम वर्क हुआ, एक इज्तमाई कोशिश हुई, तो फितनों का दरवाज़ा बंद हो गया। ये जो याजूज माजूज हैं, ये फितना ही तो हैं जो आएगा। इनको अल्लाह ताला ने क़ैद कर दिया, वहीं रहेंगे और निकल नहीं सकते। और इनका फसाद भी मशहूर था। ये कौन थे और इनके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। याजूज माजूज का लफ्ज़ तो आपने सुना होगा। कहते हैं कि ये दो भाई थे, वहशी कौम है, दुनिया के इंतहाई शिमाल मशरकी इलाकों में रहती है, और वहीं के रास्तों से यूरोप और एशिया की कौमों पे हमलावर होती थी। बास कहते हैं कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद, यानी उनका जो बेटा याफिस था ना, उसकी औलाद है। तीन बेटे आए थे ना हज़रत नूह के साथ कश्ती पे, साम, हाम और याफिस। तो याद जितनी दुनिया दिखती है ना, ये इन्हीं की नस्लों से चली। तो याफिस की नस्ल से ये याजूज माजूज हुए थे। और ये जो लोग थे, मतलब वो कहते हैं कि उन्होंने इनसे कोशिश की। और याजूज माजूज के बारे में बहुत सारी बातें हमें सही रिवायात से मिलती है। कुर्बे क़यामत की जो अलामतें कुबरा हैं, उनमें से एक अलामत याजूज और माजूज के आने की भी है। ज़मीन पर 10 बड़ी निशानियां शुरू होंगी, उसके बाद फिर क़यामत आएगी। और उन्हीं में से एक जो फितना है, वो याजूज और माजूज का है। और बहुत ज़्यादा इनके बारे में होता है। चंद रिवायात की रोशनी में आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहूँगी। बच्चों को अमूमन बहुत शौक़ होता है इन चीज़ों के सुनने का, पूछने का, तो आप ये बातें उनके लेवल पे रख के शेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बात की जाए। चले, मैं ऐसा करती हूँ, इनके बारे में आपको चंद पॉइंट्स लिखा देती हूँ और उनके साथ कोशिश करूँगी हवाले भी। एक तो यही आयतें लिख सकते हैं आप, सूरतुल कहफ की आयत 92 से 96, कि याजूज माजूज अपने इलाकों में फसाद बरपा करते थे, और वहाँ के लोगों की ख्वाहिश पर फिर ज़ुल्करनैन ने एक बहुत बड़ा बंद तामीर किया और उनको कैद कर दिया। कुरान पाक की एक और सूरत में पता चलता है, सूरतुल अंबिया आयत 96 और 97 में, कि क़यामत के करीब जब याजूज माजूज को खोला जाएगा, निकाला जाएगा, तो वो पूरी दुनिया पर हमला कर देंगे। हत्ता इसा फुतिहत याजूज व माजूज वहुम मिन कुल्ली हदबी यंसिलून वक्तरबल वादुल हक्कू फ़ैज़ा हिया शाख़िसतुन अबसारुल्लज़ीना कफ़रू या वैलना क़द कुन्ना फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा बल कुन्ना ज़ालिमीन। जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे, तो वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। इस वक्त सच्चा वादा यानी क़यामत पूरा होकर रहेगा, और इन लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी जिन्होंने कुफ़र किया। तो इस तरह ये पता चलता है कि ये हमला करेंगे। याजूज माजूज एक दीवार के पीछे कैद हैं, जिससे निकलने के लिए वो सुबह से शाम तक इसे खोदते रहते हैं। लेकिन जब दूसरे दिन आकर देखते हैं, तो दीवार अपनी असली हालत पर कायम होती है। जिस रोज़ वो शाम को इंशाअल्लाह कहकर घरों को लौटेंगे, उससे अगले रोज़ वो दीवार में नकब लगाने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। याजूज माजूज गर्दन की बीमारी में मरेंगे। याजूज माजूज तादाद में इतने ज़्यादा होंगे कि मरने के बाद जानवर और मवेशी इनकी लाशें खा खा कर खूब मोटे ताज़े हो जाएंगे। ये सारी बातें एक तवील रिवायत है इब्ने माजा की, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से, किताब है किताबुल फितन, फितने दज्जाल और खरूज ईसा इब्ने मरियम, इसमें आप पढ़ सकते हैं। जिल्द नंबर 2 है और पेज नंबर 3308। حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں، جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعاع نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے، چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں. جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں گے تو وہ دیوار کھودیں گے حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعائیں نظر آنے لگیں گی، تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا، اچھا اب چلو، باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے. اور جب انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا. پھر کھدائی شروع کر دیں گے اور باہر نکل آئیں گے، پانی ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لے لیں گے، یعنی کوئی باہر نہیں نکلے گا. پھر یہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے، یعنی جب وہ واپس آئیں گے کہ ان کے جو نیزے تھے جو ایروز تو ان کو خون لگا ہوگا، تو یہ بات دیکھ کر یہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے. تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہوں گے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ہی ہوں گے لیکن عجیب و غریب ہی کوئی مخلوق ہوگی، وحشی جانوروں کی طرح کی کوئی چیز دکھتی ہے. پھر دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد خلافت میں یاجوج ماجوج نکلیں گے. ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی نصف تعداد بحرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی. اللہ اکبر، سمندروں کے سمندر پی جائیں گے. آپ ذرا سوچیں تو خوف آتا ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے. اس دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے. اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، خون آلود ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی مار دیا. یہ ساری باتیں بھی صحیح مسلم کی روایت سے نواس بن سمان کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے. آخر پھر ان کو مار دیا جائے گا. کہتے ہیں کہ ایسے پرندے آئیں گے، حضرت عیسیٰ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اب ان کی بدبو اتنی ہے، اتنی سڑاند ہے، زمین پہ تعفن ہو رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو پھر وہ دعا کریں گے تو اس کے نتیجے میں زمین پر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، جہاں کہیں اللہ کا حکم ہوگا وہاں ان کو پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش بھیجے گا جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دیے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور یہ جو تبریہ ہے، یہ شام کے سرحدی علاقے کے قریب افیق یا فیق سے مغرب کی جانب چند میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑی جھیل ہے، اسی سے دریائے اردن نکلتا ہے، اس کا پانی پی جائیں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت تباہ کن ہوگا. اب دیکھیے ابھی دنیا میں کتنے فتنے آنے ہیں. آج بھی دنیا کا رخ کچھ اتنا اچھا نہیں دکھتا، لیکن جب یہ سب کچھ آئے گا تو لوگ کیسے حلق کے قریب ان کی جانیں آئی ہوں گی. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت بدترین مخلوق پہ آئے گی. ہر دن کو فتنہ اٹھے گا، ہر دن کو فتنہ اٹھے گا. ایک سے بچ جائیں گے تو دوسرے سے اٹھ جائیں گے. ایک روایت ہے حضرت زینب بنت جہش سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا. آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت اور انگوٹھے کو ملا کر دکھایا، یعنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملایا، جیسے ہم کسی چیز کو دکھاتے ہیں گول کر کے، کہ اتنا سوراخ ہو گیا. حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، क्या नेक लोगों की मौजूदगी में ही हम हलाक कर दिए जाएंगे, यानी नेक लोग अभी मौजूद और हम हलाक हो जाएंगे? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि उस वक्त हलाक होंगे जब बुराई आम हो जाएगी। इब्ने माजा की रिवायत है ये ज़ैनब बिनते जहश से, कहते हैं कि ये निकलेंगे, इनका फितना क्या होगा, कत्ल व गारत करेंगे, खून रेजी शुरू कर देंगे और हुए ज़मीन पर अपने अलावा किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, और या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ही में से हैं। इब्ने अमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी से रिवायत करते हुए, याजूज माजूज आदम की औलाद से हैं, अगर वो आबादियों में भेज दिए जाते तो लोगों के असबाब ज़िंदगी यानी मईशत बर्बाद कर देते। तबरानी की यह रिवायत है। बस लोग मुख्तलिफ कौमों को कहने लगते हैं ये जाजूज माजूज हैं, नाम ले ले के कहते हैं, ये दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि ये हज़रत ईसा के ज़माने में आएंगे और जो कौम आज आ चुकी है उसको आप कैसे क्यास कर सकते हैं। इनका हुलिया भी बताया गया सही रिवायात में, इनके चेहरे चौड़े और मोटे, आंखें छोटी, बाल सुर्खी माइल स्याह होंगे। ये भी तबरानी की सही रिवायत है इब्ने हरमला से, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने खुतबे में इरशाद फरमाया, तुम लोग कह रहे हो कि अब दुश्मन नहीं रहा, हालांकि तुम लोग हमेशा अपने दुश्मनों से जिहाद करते रहोगे, हत्ता कि याजूज माजूज निकल आएंगे, चौड़े चेहरों वाले, छोटी आँखों वाले और सुर्खी माइल स्याह बालों वाले, हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे, व मिन कुल्ली हदबी यंसिलून, और इनके चेहरे चमड़ा भरी ढाल जैसे मोटे होंगे। ये मुसनद अहमद और तबरानी की रिवायत है। तो आप ख़ुद ही देख लीजिए कि फिर अभी दुनिया में क्या कुछ होने वाला है। आप देखिए कि नस्लों में से ही होंगे ना, हम ना होंगे लेकिन हम ही जैसों की नस्लों में से ही होंगे ना। और इन फितनों के दौर में आपको पता है कि फिर बचत का रास्ता एक ही है, अल्लाह की किताब। डिफरेंट रिवायतों से मिलता है कि बहुत फितने आएंगे, तो पूछा था सहाबा कराम ने कि इन फितनों में से फिर निजात की क्या राह होगी, तो आपने फरमाया कि अल्लाह की किताब से जुड़ जाओ, अल्लाह की किताब को थाम लो। आज भी वही बचा हुआ इन फितनों से, यकीन करें। बाहर जितने फितने हैं, आपके अंदर का सुकून जो है वो क्यों है, कब होता है वो सुकून? जब आप अल्लाह के दीन से जुड़े हुए हैं। ये तो इतनी प्यारी छांव मिली हुई है हमें, अल्लाह ना करे हमारी छांव ये कभी छीने। शैतान जो है वो तो हमारी ये खैर ये नेमतें छीनना चाहेगा, लेकिन फितनों के दौर में बचाव से बचने की एक ढाल है, और अल्लाह हमारी इस ढाल को मजबूत करे दिन ब दिन। तिलावत सुने, थोड़ी सी बोझल हो रही है ना तबीयत, यहाँ तक तिलावत सुनाएं, फिर इंशाल्लाह अब आगे से आखिरी 10 आयतें हैं जो सूरत की, ये भी बहुत अहम आयतें हैं।
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا